नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सार्क देशों में आर्थिक विकास और समृद्धि लाने के लिए शांति और सुरक्षा आवश्यक। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बाहरी इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर। असम में पंचायत चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्वक जारी। केरल में कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आज से शुरू। संयुक्त अरब अमारात की संघीय राष्ट्रीय परिषद में अगले संसदीय सत्र से महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50% होगा। एडिलेड क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की पकड़ मजबूत। भारत को मैच के अंतिम दिन ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट की जरूरत। और भुवनेश्वर में हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज मलेशिया का मुकाबला जर्मनी से और पाकिस्तान का सामना नीदरलैंड से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के संस्थापक सदस्य के नाते इसकी एकजुटता के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सार्क का कल 34वां घोषणा पत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सार्क ने पिछले 3 दशक के दौरान प्रगति की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए आतंकवाद एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और हर प्रकार के आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने की आवश्यकता है। श्रीनगर के बाहरी इलाके मुजकुंड में 18 घंटे तक चली मुठभेड़ में लश्करे के 3 आतंकी मारे गए हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया कि ये आतंकी श्रीनगर में सुरक्षा शिविर पर एक बड़े आत्मघाती हमले की योजना बना रहे थे। मुठभेड़ के दौरान इलाके में कई भवनों को नुकसान पहुंचा है।
ये एनकाउंटर सुबह ही खत्म हुआ है जो पिछली रात से चल रहा था। इसमें 3 आतंकवादियों के छुपे होने की इत्तला थी, जिसके बाद वहां पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। इसमें 3 आतंकी जो है मारे गए हैं, उनकी पहचान को सर्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो इत्तला है उसके मुताबिक एक उन्हें फॉरनर हो सकता है और लोकल मिल सकते हैं।
असम में पंचायत चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। राज्य के 10 जिलों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आंचलिक पंचायत, जिला परिषद और ग्राम पंचायत के सदस्य और अध्यक्ष चुनने के लिए मतदान हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त HN वोरा ने आकाशवाणी को बताया कि दिन में 1 बजे तक 47% मतदान हो चुका था। इस चरण के मतदान के लिए कुल 9,428 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मतदान शाम 3 बजे तक चलेगा।
मतदान शुरू होने से पहले ही लोग मतदान केंद्र के सामने खड़े होते नजर आए। कक्षा जिले के एक मतदान केंद्र में कुछ दुष्कृतिकारियों ने एक मतपेटी चीनने के अलावा कहीं से भी कई अपने घटना की खबर नहीं है। इस चरण में कुल 35,056 उम्मीदवार मैदान में हैं। 292 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध विजय घोषित कर दिए गए हैं। मतगणना 12 दिसम्बर को होगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
निर्वाचन आयोग ने राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में कर्णपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र में सोमवार को पुनर्मतदान का आदेश दिया है। शुक्रवार को मतदान के दौरान इस केंद्र में अनियमितता की शिकायतें मिली थीं। जयपुर में संवाददाता सम्मेलन में निर्वाचन कार्यालय के प्रवक्ता ने ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभा चुनाव की मतगणना मंगलवार को होगी।
जनादेश।
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के परिणाम
मंगलवार 11 दिसंबर 2018।
संतुलित और सटीक विश्लेषण सुबह 8:30 से दोपहर 2 बजे तक।
विशेष रेडियो ब्रिज कार्यक्रम रात 9:30 से 10:30 तक।
सुनना ना भूलें आकाशवाणी के FM गोल्ड, राजधानी चैनल और राष्ट्रीय नेटवर्क पर।
आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने मतगणना के मद्देनजर अपने बुलेटिनों के समय में परिवर्तन किए हैं। दोपहर 12 बजे का अंग्रेजी बुलेटिन अब 5 के बजाय 10 मिनट का होगा। हिंदी बुलेटिन 12:10 से 12:20 तक प्रसारित किया जाएगा। अंग्रेजी के मिड डे बुलेटिन और हिंदी के दोपहर समाचार का समय भी 15 मिनट बढ़ाया गया है। मिड डे न्यूज दोपहर बाद 2 बजे से 2:30 बजे तक तथा दोपहर समाचार 2:30 बजे से 3 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। शाम 6 बजे के अंग्रेजी बुलेटिन और 6:05 के हिंदी बुलेटिन का समय भी 5-5 मिनट बढ़ाया गया है। अंग्रेजी बुलेटिन शाम 6 बजे से 6:10 तक और हिंदी बुलेटिन 6:10 से 6:20 तक प्रसारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मंगलवार को मतगणना वाले दिन आकाशवाणी से सुबह 8:30 से दोपहर बाद 2 बजे तक चुनाव की ताजा जानकारी के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। भोपाल, जयपुर, रायपुर, हैदराबाद और आइजोल केंद्रों को लिंक करके 9:30 से 10:30 तक रेडियो ब्रिज कार्यक्रम भी प्रसारित किया जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र मंगलवार से शुरू होगा जो 8 जनवरी तक चलेगा। लगभग 1 महीने तक चलने वाले इस सत्र में 20 बैठकें होंगी। इस दौरान राज्यसभा में 8 और लोकसभा में 15 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। इस बीच सरकार ने दोनों सदनों में कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी कल ही सर्वदलीय बैठक बुलाई है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन मंगलवार को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से भेंट करेंगे। अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये संसद का अंतिम पूर्ण सत्र होगा। सत्र की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग संसद के समक्ष मुद्दे कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसे 9:30 से इंद्रप्रस्थ और एफएम गोल्ड चैनलों पर सुना जा सकेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरल में कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन आज से शुरू हो गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने टर्मिनल भवन में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। बाद में मुख्यमंत्री और श्री प्रभु ने सवेरे 10:10 पर अबुधाबी के लिए पहली उड़ान को झंडे दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री प्रभु ने कहा कि कन्नूर हवाई अड्डे से केरल में व्यापार, वाणिज्य, पर्यटन, रोजगार और निर्यात की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कन्नूर हवाई अड्डा शुरू होने के साथ ही केरल देश का एकमात्र ऐसा राज्य हो गया है जहां के 4 शहरों में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं।
केंद्रीय मंत्री ने अपने भाषण में इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि आधुनिक सुविधाओं वाला ये हवाई अड्डा देश के लिए आदर्श है। एयर इंडिया एक्सप्रेस बोइंग 737 की पहली उड़ान में 185 यात्री सवार थे। ये उड़ान आज शाम ही कन्नूर लौट आएगी और कल से सुचारू रूप से अपनी सेवाएं देगी। 2000 एकड़ में फैला कन्नूर का ये नया हवाई अड्डा एक समय में 2000 और एक साल में करीब 15 लाख अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को सेवाएं दे सकेगा। तिरुवनंतपुरम से शमीला की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नईम अख्तर।
उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलंदशहर के अपर पुलिस अधीक्षक रईस अख्तर का तबादला कर दिया है। गाजियाबाद के अपर पुलिस अधीक्षक मनीष मिश्र को उनकी जगह पदस्थापित किया गया है। 3 दिसंबर को कथित गौहत्या को लेकर बुलंदशहर में भड़की हिंसा के सिलसिले में पुलिस अधिकारियों का ये 4th तबादला है। इस हिंसा में पुलिस अधीक्षक इस हिंसा में पुलिस निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह और एक ग्रामीण युवक की मौत हो गई थी। इस घटना के सिलसिले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें मामले का मुख्य संदिग्ध और सेना का जवान जितेंद्र मलिक उर्फ जीतू भी शामिल है, जिसे सेना ने कल रात राज्य के विशेष कार्यबल को सौंप दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन के दौरे पर आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जाएंगे। राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद श्री कोविंद पहली बार गोरखपुर जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज शाम वहां कुछ गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात करेंगे।
गोरखपुर पहुंचकर राष्ट्रपति सर्किट हाउस पर शहर के कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कल वह गोरखनाथ मंदिर जाएंगे जहां वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बाद में श्री कोविंद महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के स्थापना समारोह में भाग लेंगे और कुछ छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर शहर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। आसपास के जनपदों से अतिरिक्त बलों को बुलाया गया है। मुल्तान सिंह यादव, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि ओडिशा में ढेंकानाल आश्रय गृह में कथित यौन उत्पीड़न के सभी दोषियों को जेल भेजा जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने आज दमण में कहा कि ओडिशा के आश्रय गृह में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है और इसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए।
ये बहुत शर्म की बात है कि कोई इतना बड़ी जगह नहीं या इतने ज्यादा लोग नहीं थे कि वो हर हफ्ते हर महीने चेक नहीं कर सकते थे और उसमें कन्वर्जन के लिए भी इस्तेमाल करें उनको, तो फिर आप क्यों चला रहे हैं आश्रय? ये तो क्रिमिनल्स करते हैं। वहाँ सारे आश्रयों के स्टाफ को जेल में डालना चाहिए, सैक नहीं, जेल में डालें।
देश में सभी स्टार्टअप को सूचीबद्ध करने की एक बड़ी पहल के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने आधुनिक कारोबारों को कई छूट देने की योजना बनाई है। प्रस्तावित बदलाव में सेबी द्वारा बनाए गए सांस्थानिक व्यापार मंच को नवाचार संवर्धन मंच के रूप में नामित करना भी शामिल है। सेबी ने इस वर्ष जून में स्टार्टअप प्लेटफॉर्म की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। इस समूह ने स्टार्टअप निवेशकों, बैंक कर्मियों और धन प्रबंधन प्रतिष्ठानों सहित संबद्ध पक्षों के साथ व्यापक परामर्श करके सेबी को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त अरब अमारात ने संघीय राष्ट्रीय परिषद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 22.5% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। ये व्यवस्था आगामी संसदीय चुनाव से लागू होगी। संघीय राष्ट्रीय परिषद संयुक्त अरब अमारात की एक संसदीय परामर्शदात्री समिति है। अमारात की समाचार एजेंसी ने खबर दी है कि इस निर्णय का उद्देश्य संसद में महिला प्रतिनिधित्व की दृष्टि से संयुक्त अरब अमारात को अग्रणी देशों में शामिल करना है। पाकिस्तान में कराची में कल रात एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हुए विस्फोट में एक महिला सहित 6 लोग घायल हो गए। इस कार्यक्रम का आयोजन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने किया था। ये घटना परफ्यूम चौक के पास हुई जहां मिलाद का आयोजन किया गया था। एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 104 रन बना लिए थे। जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया को अभी 219 रन की आवश्यकता है और उसके 6 विकेट शेष हैं। भारत की ओर से रविचंद्रन अश्विन और मोहम्मद शमी ने 2-2 विकेट लिए। भुवनेश्वर में हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज शाम 5 बजे मलेशिया का मुकाबला जर्मनी से, जबकि शाम 7 बजे पाकिस्तान का सामना नीदरलैंड से होगा। भारत ने ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने श्रीमती सोनिया गांधी की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। स्वच्छ गंगा मिशन में नवीन प्रौद्योगिकी और वित्तीय नवाचारों का प्रयोग किया जाएगा। ये जानकारी कल नई दिल्ली में संपन्न हुए 3 दिवसीय भारत जल प्रभाव सम्मेलन के दौरान दी गई। इस सम्मेलन में 16 देशों के विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हुए। सरकार ने सामान्य उपयोग में आने वाले कुछ चिकित्सा उपकरणों को औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम में औषधि के रूप में शामिल कर लिया है। इनमें नेबुलाइजर, ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन, डिजिटल थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर शामिल हैं। इस संशोधन के साथ ही अधिनियम में औषधि के रूप में शामिल चिकित्सा उपकरणों की संख्या 23 से बढ़कर 27 हो गई है। नए उपकरणों को सूची में शामिल करने से सरकार के लिए इन उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना संभव होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सार्क देशों में आर्थिक विकास और समृद्धि लाने के लिए शांति और सुरक्षा आवश्यक है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के बाहरी इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। असम में पंचायत चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्वक जारी है। केरल में कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने आज से काम करना शुरू कर दिया है। संयुक्त अरब अमारात की संघीय राष्ट्रीय परिषद में अगले संसदीय सत्र से महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50% होगा। एडिलेड क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की पकड़ मजबूत बनी हुई है। भारत को जीत के लिए मैच के अंतिम दिन ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट की जरूरत है। और भुवनेश्वर में हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज मलेशिया का मुकाबला जर्मनी से होगा और पाकिस्तान का सामना नीदरलैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।